लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह स्वतः को सुसमाचार के प्रकाश में नवीकृत करने की कृपा और शक्ति प्राप्त कर सके। आमेन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है बुधवार के आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस के धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार के आमदर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार से सभों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Quando si tratta del Vangelo e della missione di evangelizzare, Paolo si entusiasma, esce fuori di sé.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। सुसमाचार और प्रेरिताई कार्य के संबंध में हम पौलुस को बहुत ही उत्साहित पाते हैं। इसके लिए वह अपने आप से बाहर चले जाते हैं। इसके सिवाय हम उनके जीवन में और दूसरी बातों को नहीं पाते हैं जो ईश्वर की ओर से उन्हें दिया गया है। सुसमाचार की घोषणा और प्रेरिताई का कार्य उनके लिए सब कुछ है, जिसके लिए उनका पूरा जीवन समर्पित है। इसे घोषित करते हुए वे कहते हैं, ख्रिस्त ने मुझे बपतिस्मा देने हेतु नहीं वरन सुसमाचार घोषित करने को भेजा है। पौलुस अपने जीवन के अस्तित्व को सुसमाचार की बुलाहट निरूपित करते हैं। वे ख्रिस्त के संदेश को प्रसारित करने सुसमाचार को बतलाते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। रोम के ख्रिस्तियों को लिखित अपने पत्र में वे अपने बारे में कहते हैं, पौलुस मसीह का सेवक, ईश्वर की ओर से चुना गया और सुसमाचार प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। यह उसकी बुलाहट है। संक्षेप में वे इस बात से अवगत हैं कि उनका चुनाव सबों के बीच सुसमाचार को घोषित करने हेतु हुआ है और वे कुछ दूसरा नहीं बल्कि अपनी सारी शक्ति को इस प्रेरिताई हेतु समर्पित करते हैं। यही कारण है कि गलातियों के समुदाय से संबंधित कोई भी उनकी उदासी, निराशा और यहाँ तक कि उनकी कटुता के भाव को समझ सकता है, जो उनकी आंखों के सामने गलत दिशा में बढ़ रहे होते हैं, जहाँ से वापस लौटना अपने में कठिन है। सारी चीजें धर्म ग्रंथ के चारों ओर केंद्रित हैं। पौलुस चारों सुसमाचार के बारे नहीं सोचते हैं, जैसे कि हमारे लिए यह स्वाभाविक है। सच्चाई यह है कि जब उन्होंने यह पत्र लिखा, चारों सुसमाचारों में से कोई भी नहीं लिखा गया था। सुसमाचार को हम चार क्रियाओं में व्यक्त पाते हैं।
क्रिस्तो मोरी पर आई नोस्ट्री पेकाती सेकोंडो ले स्क्रिटूरे फू सेपोल्टो ए रिसोर्टो इल टर्सो जोर्नो सेकोंडो ले स्क्रिटूरे ए अपार्वे अ चेफा।
ख्रिस्त हमारे पापों के कारण मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे और कैफस तथा बारहों को दिखलाई दिए। यह सुसमाचार प्रतिज्ञाओं की पूर्णता है और सारी मानव जाति के लिए मुक्ति का उपहार है। जो कोई इसे स्वीकार करता, उसका मेल मिलाप ईश्वर से होता, वह सच्चे पुत्र की भांति स्वीकारा जाता और अनंत जीवन का भागीदार बनता है। संत पापा ने कहा कि पौलुस इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इस महान उपहार को पाने के बाद भी गलातियों के समुदाय ने एक अन्य सुसमाचार को क्यों ग्रहण किया। हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि उन ख्रिस्तीय समुदायों ने पौलुस के द्वारा घोषित किए गए सुसमाचार का परित्याग अब तक नहीं किया था। प्रेरित यह अनुभव करते हैं कि अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन उन्हें सख्त हिदायत देने की आवश्यकता है और वे इसे कठोरता से करते हैं। अपने पहले तर्क में वे नए सुसमाचार प्रचारकों के बारे में कहते हैं कि उनके द्वारा घोषित की गई बातें सुसमाचार नहीं हो सकती हैं। इसके विपरीत उनके द्वारा की गई सुसमाचार की घोषणा सत्य के सुसमाचार को विखंडित करता है, क्योंकि वह विश्वास में मिलने वाली लोगों की स्वतंत्रता में अड़चन उत्पन्न करता है। संत पापा ने कहा कि यहाँ हमारे लिए गौर करने वाली बात यह है कि विश्वास हमें स्वतंत्र होने में मदद करता है। गलातियों का समुदाय एक नया विश्वासी समुदाय था, अतः उनका विचलित होना हम समझ सकते हैं। वे मूसा द्वारा दी गई संहिता की जटिलताओं और उत्साह में यीशु ख्रीस्त में मिले विश्वास को अब तक नहीं जान पाए थे। उन्होंने नए उपदेशकों की बातों को पौलुस द्वारा दिए गए संदेश का पूरक समझा।
Il Vangelo è uno solo ed è quello che lui ha annunciato.
सुसमाचार एक है जिसकी घोषणा उन्होंने की है, और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं हो सकता है। हम इस बात पर ध्यान दें, पौलुस यह नहीं कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने इन बातों की घोषणा की है अतः ये बातें सत्य है। नहीं, यह उनका अभिमान होगा, यह अपने में घमंड की बात होगी, बल्कि वे कहते हैं कि यह एकमात्र सच्चाई है क्योंकि यह यीशु ख्रीस्त के बारे में है। अतः वे लिखते हैं, भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उसे ना तो ग्रहण किया और सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। हम पौलुस के इन कठोर वचनों को समझ सकते हैं। वे दो बार अभिशप्त हो प्रयोग करते हैं, जो हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराता है कि वे बातें जो हमारे विश्वास की जड़ों को हिलाती हैं, उन्हें समुदाय से अलग रखा जाए। नए उपदेशक समुदाय के लिए खतरे की भांति हैं। अतः संक्षेप में कहें तो वे इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। सुसमाचार की सच्चाई से कोई समझौता नहीं। यह जिस रूप में हमारे लिए घोषित किया गया है, या तो आप इसे ग्रहण करें या किसी दूसरी चीजों को। संत पापा ने जोर देते हुए कहा,
Non si può scendere a compromessi. La fede in Gesù non è merce.
हम सुसमाचार से कोई तोल मोल नहीं कर सकते हैं। यीशु ख्रीस्त में विश्वास कोई वस्तु नहीं जिसका तोल मोल किया जाए। यह मुक्ति है, यह मिलन है, यह उद्धार है, इसकी बिक्री नहीं होती है। इस स्थिति को पत्र के शुरू में विरोधाभाव स्वरूप वर्णन किया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें जो शामिल हैं, वे अच्छे मनोभावों से प्रेरित हैं। गलाती, जिन्होंने नए प्रेरितों की बातें सुनी, अपने में यह सोचते हैं कि खतना के द्वारा वे ईश्वर की इच्छा को और भी करीब से पूरा करेंगे तथा पौलुस को अधिक प्रिय होंगे। पौलुस के विरोधी निष्ठा से प्रेरित हैं, जो अपने पूर्वजों के रीति को, जिसे उन्होंने अपने पुरखों से सीखा, नियमों के अनुपालन में सच्चे विश्वास की अभिव्यक्ति का एहसास करते हैं। अपने निष्ठा की आड़ में वे अपनी जिद को सही ठहराते और पौलुस के प्रति शंका उत्पन्न करते हैं, जिसे परंपरा के संबंध में अपरंपरागत माना जाता है। वहीं पौलुस अपने में इस बात से सजग हैं कि उनका प्रेरिताई ईश्वरीय दिव्यता से प्रेरित है, जिसे पूरा करने हेतु वे पूरे जोश से आगे बढ़ते हैं। यह एक नवीन सुसमाचार है जो खत्म नहीं होता। यह कोई फैशन वाला सुसमाचार नहीं, यह सदा नया बना रहने वाला सुसमाचार है। उनका प्रेरितिक जोश उन्हें कठोर बनाता है, क्योंकि वे नए ख्रिस्तियों को बड़ी जोखिम में देखते हैं। संक्षेप में, अच्छे इरादों के इस भूल भुलैये में दिव्य सत्य को समझने हेतु हमें स्वयं को अलग करना आवश्यक है, जो यीशु उनकी शिक्षा और पिता के प्रेम में हमारे लिए प्रकट होता है। संत पापा ने कहा कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम आत्मनिरीक्षण करना सीखें। हमने अतीत में और वर्तमान में भी इन बातों को देखा है कि कुछ उपदेशक अपनी तरह से सुसमाचार की शिक्षा देते हैं। कभी कभी वे धर्म ग्रंथ के अनुरूप सच्चे आदर्शों को घोषित करते, लेकिन बहुधा यह आंदोलन बनकर रह जाता है। वह ख्रीस्त का सुसमाचार नहीं वरन संस्थापक का सुसमाचार होता है। यह शुरू में मददगार होता लेकिन अंततः फलदायक नहीं होता, क्योंकि उनकी जड़ें गहराई तक नहीं गई हैं। इसी कारण से पौलुस के स्पष्ट और निर्णायक वचन गलातियों के लिए हितकर थे और हमारे लिए भी लाभप्रद हैं। सुसमाचार हमारे लिए यीशु ख्रीस्त का उपहार है। इसे वे हमारे लिए प्रकट करते हैं। यह वही है जो हमें जीवन देता है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासी समुदाय के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ किया और सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Aeternum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, मेरी सांसें
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 4 अगस्त के ट्वीट संदेश में विश्वासियों से सुसमाचार का पाठ करने और उस पर चिंतन करने का आह्वान किया। उन्होंने संदेश में लिखा, सुसमाचार एक शुभ संदेश और शक्ति है जो हमारे जीवन एवं हृदय को बेहतर बनाने के लिए बदल देता है। इसके लिए मैं आपसे हर दिन सुसमाचार का पाठ करने और मुक्ति के इस अटूट स्रोत से पोषित होने हेतु इसके एक छोटे अंश पर चिंतन करने की सलाह देता हूँ। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने संत जॉन मेरी व्यानी के पर्व की याद करते हुए सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। संत पापा ने अपने संदेश में लिखा, आइए हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें ताकि संत जॉन मेरी व्यानी के आदर्शों पर चलते हुए वे अपने सभी कठिनाई में पड़े भाई बहनों के लिए दया, प्रेम और एकात्मकता के साक्ष्य द्वारा जीवित सुसमाचार प्रदान कर सकें। एक साल पहले आज ही के दिन लेबनान की राजधानी बेरूत में भयंकर विस्फोट हुआ था और जान माल की बहुत अधिक क्षति हुई थी। संत पापा फ्रांसिस ने लेबनान की ठोस मदद हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान लेबनान की याद करते हुए कहा, प्रिय देश लेबनान, अपनी राजधानी बेरूत में भयंकर विस्फोट के कारण मौत और विनाश के एक साल बाद मैं सबसे बढ़कर पीड़ितों और उनके परिवार वालों, घायलों और जिन्होंने अपना घर एवं जीविका खो दिया है उनकी याद करता हूँ। पिछले साल 4 अगस्त को बेरूत में 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट से हुए विस्फोट में 200 से अधिक लोग मारे गए थे और 3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। इस साल के जुलाई माह में संत पापा फ्रांसिस ने लेबनान के ख्रिस्ती धर्म गुरुओं से वैटिकन में मुलाकात की थी। उस दिन की याद करते हुए उन्होंने कहा, लेबनान के लिए प्रार्थना और चिंतन के दिन 1 जुलाई को हम सभी ख्रिस्ती धर्म गुरुओं ने लेबनान के लोगों की आशा, आकांक्षाओं, कुंठाओं और थकान को दूर करने के लिए तथा इस कठिन संकट से उबरने हेतु हमने ईश्वर से आशा के उपहार के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि लेबनान के उत्थान के रास्ते पर इसकी ठोस मदद करें। उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से फ्रांस द्वारा आयोजित वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस संबंध में उपयोगी साबित होगा। अंत में संत पापा ने लेबनान की यात्रा की अपनी इच्छा व्यक्त की तथा इसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि लेबनान फिर एक बार पूरे मध्य पूर्व के लिए शांति और भाईचारा का एक संदेश बने। कैथोलिक उदाता संगठन एड टू द चर्च इन नीड से बातें करते हुए लेबनान में कार्मेलाइट धर्म समाज के प्रोविंशियल फादर रेमंड अब्दो ने कहा कि पोप फ्रांसिस एक प्रेरणादायक समर्थक हैं। संत पापा ने हमें उम्मीद दिलाई है कि हम संकट का सामना कर सकते हैं। विश्वव्यापी कलीसिया से उनकी अपील के साथ हम नीचे नहीं जा सकते। संत पापा लेबनान की कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। फादर अब्दो ने कहा, सभी प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद हम कुछ दृढ़ता पुनः प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें क्यों किसी से डरना है जब हम यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। देश के सामने आर्थिक संकट ने परिवारों को अपना गुजारा करने में असमर्थ कर दिया है, जिससे कई ख्रिस्ते परिवार पलायन करने पर विचार कर रहे हैं। बेरूत से 20 किलोमीटर दूर होली फैमिली स्कूल की प्रशासनिक निदेशक सिस्टर ईवा अबू ने कहा कि आर्थिक संकट के कारण जून और जुलाई में उन्होंने अपने 20 शिक्षकों को खो दिया है। उन्होंने कहा, उनमें से अधिकांश लोग पलायन करना चाहते हैं क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। उनकी खरीद शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। उन्होंने बतलाया कि जौनी, जो एक ऐसा शहर है जिससे आमतौर पर गरीब नहीं माना जाता था, इसके कुछ परिवार सुबह जल्दी निकल जाते हैं ताकि वे कूड़ेदान से भोजन बटोर सकें। एड टू द चर्च इन नीड ने ख्रिस्त समुदाय को 2.3 मिलियन यूरो के साथ पुनर्निर्माण में मदद करने का समर्थन दिया है। संगठन ने आपातकालीन राहत सहायता में 1.9 मिलियन यूरो की मदद प्रदान की है। लेबनान की मदद हेतु कई उदार लोगों और संगठनों ने अपना हाथ बढ़ाया है। उनमें से एक है कारितास इटली। कारितास इटली द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 4 अगस्त 2020 को 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से 7000 लोग घायल हुए थे और करीब 3 लाख लोग बेघर हो गए थे। कोविड-19 महामारी के कारण अब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट 3 गुना बढ़ गया है। इटली के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन की मदद और कैथोलिक कलीसिया के अन्य उदार संगठनों की सहायता से कारितास इटली लेबनान के 2 जिलों की मदद कर रहा है। पहला विस्फोट से प्रभावित लोगों और दूसरा सामाजिक, आर्थिक एवं शरणार्थी संकट झेल रहे लोगों को। कारितास द्वारा अगस्त 2020 से जून 2021 तक 3708 स्वच्छता किट, 7712 भोजन पैकेट और 3,42,145 लोगों को गर्म भोजन बांटा गया है। इन कामों को करने के लिए 1,541 स्वयंसेवकों ने मदद दी है। 71,999 दवाएं बांटे गए हैं एवं 7,322 चिकित्सा परामर्श उपलब्ध किए गए हैं। 1,282 घर और एक प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल घरों को पुनर्निर्मित किया गया है। 19 व्यवसायिक कार्यों को बचाया गया है तथा 2 स्कूलों के बेरोजगार परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप देकर सहयोग दिया गया है। कारितास का कार्य जारी है और यह फरवरी 2022 तक चलेगा, किंतु संकट को देखते हुए इससे इसकी गतिविधि को आगे भी जारी रखा जा सकता है। म्यांमार के कैथोलिक पुरोहित एवं प्रचारक को सशस्त्र समूह ने अगवा कर लिया है। हक्का के धर्माध्यक्ष ने रविवार को उनकी रिहाई की अपील की। पश्चिमी राज्य चीन में म्यांमार के सैन्य जुट्टा का विरोध करने वाले एक सशस्त्र प्रतिरोध समूह ने फादर नोएल हरंग तिन थांग और उसके साथ यात्रा कर रहे एक प्रचारक का अपहरण कर लिया। ऊका समाचार के अनुसार चीन लैंड रक्षा बल के सदस्यों ने 26 जुलाई को उस समय फादर नोएल और उसके साथ प्रचारक को जब्त कर लिया जब वे सरखुआ शहर से चीन राज्य की राजधानी हक्का जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार फादर टिनथोंग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित कई विस्थापित लोगों की मदद कर रहे थे जो जून की शुरुआत में संघर्ष के बाद पल्ली में शरण लिए हुए थे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।